ओम शांति। कल्प पहले की तरह आज भी मधुबन पांडव भवन मम्मा और बाबा की इस तपस्या भूमि में हम सभी तपस्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं और तपस्या अच्छी तरह कर सके, पूरा लाभ ले सके, उसके लिए सबसे पहले सभी को ये आत्मस्मृति का तिलक लगाया है कि जब तक हम भट्टी में हैं तब तक सभी के मन में बुद्धि में यही लक्ष्य रहे कि मुझे अपनी आत्मा को पूरी रीति से यहां से भरपूर करके जाना है। और हम सभी को भरपूर करने के लिए पहले से ही हमारे अंदर एक अच्छा बल भर जाए उसके लिए आज खास विशेष शीलू बहन जी हमारे सामने बैठे हैं। हम सभी एक ताली के द्वारा उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। ज्यादा कुछ न कहकर हम सभी उनको सुनेंगे। विशेष अभी वो हमें जिस भट्टी के लिए हम आए हैं उसका लक्ष्य सुनाएंगे। शीलू बहन जी, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहिनी जी तथा सर्व वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से, आप सभी इंडिया कॉलोनी निवासी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हो जो सबसे पहले आपको नंबर मिला है। आज से यह भट्टियों का सिलसिला यहाँ शुरू हो रहा है जो सितंबर मास तक चलेगा, इतना लंबा चलेगा। डिमांड बहुत है लेकिन आपका पहला नंबर लगा, इसीलिए आप बहुत ही भाग्यवान हो। अपने लिए ताली बजाओ वाले। मधुबन तपोभूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, जहाँ मम्मा बाबा ने, हमारी दादी जी ने, दीदी जी ने सब तपस्वी आत्माओं ने इस आंगन में विचरण कर बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस यहाँ तैयार किए हैं और यहाँ से विश्व में भेजे। तो ऐसे स्थान पर आते ही योग तो स्वाभाविक ही लग जाता है, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे ही पांडव भवन में एंटर करते हैं बाहर के वाइब्रेशन और यहाँ के वाइब्रेशन के अंतर को तुरंत महसूस करते हैं, करते हैं ना कि नहीं? और खास करके बाबा की झोपड़ी से लेकर बाबा का कमरा, बाबा की ऑफिस, फिर हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, ये जो मार्ग है वहाँ बाबा मम्मा ने कितनी बार विचरण किया होगा, दादियों ने कितनी बार विचरण किया होगा। बाबा अक्सर झोपड़ी में आते थे, कमरे में जाते थे, हिस्ट्री हॉल में आते थे, और जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ बाबा क्रिकेट खेलते थे। तो मानो ये जो मार्ग है ये तो बहुत ही चार्ज्ड है, बहुत ही शक्तिशाली है, पर पूरा पांडव भवन उसी शक्ति से भरपूर है जरूर। तो ये अगले चार दिन आज को अगर छोड़े तो अगले चार दिन 19, 20, 21, 22 आप मौन तपस्या भट्ठी में बैठेंगे। भट्ठी में बैठने का क्या भाव होता है, भट्ठी किस लिए पकाई जाती है, भट्ठी में जो चीज पड़ी वो बदल जाती है, क्योंकि आग होती है ना, भट्ठा भट्ठी, तो आग में जो चीज पड़ती है वो चीज वापस उसी रूप से बाहर नहीं आती है, जैसी चीज वैसा उसमें परिवर्तन होता है। बाबा बहुत मिसाल देते हैं, अगर खाद वाला सोना आग में डालते हैं तो आग में पड़ने से सोने की जो खाद है वो पिघल जाती है और सोना शुद्ध हो जाता है, खाद निकल जाती है। तो अपवित्र चीज को पवित्र बनाती है आग। अगर उसमें कोयला डालते हैं तो कितना काला कोयला होता है, पर आग में पड़ते ही वो कोयला इतना पक जाता है, लाल लाल हो जाता है पहले, फिर एकदम राख बन जाता है। तो काला काला पड़ा और गोरा गोरा हो गया, ऐसे ही कहेंगे। फिर उसमें कोई भी बहुत हार्ड चीज, सख्त चीज डालो तो नरम हो जाती है। टमाटर, बैंगन, आलू, है ना, भरता बनाते ना बैंगन का, तो क्या करते हैं, आग में डालते हैं, तो जैसे आग में वो बैंगन डालते अंदर ही अंदर नरम होता जाता है। तो कोई कठोर चीज, कोई सख्त चीज, जैसे ही आग में पड़ी वो नरम हो जाती है, और इसके विपरीत कोई नरम चीज पड़ी तो घट्ट हो जाती है। मिट्टी की ईंट अगर उसमें डालते हैं तो क्या होता है, हाँ, इतनी सख्त हो जाती है, नहीं तो मिट्टी तो टूटने वाली चीज है, गिरने वाली चीज है, बिखरने वाली चीज है, लेकिन आग में वो इतनी पक जाती है, जो अगर गिराओ भी ईंट तो मजबूत होती है तो वो टूटती नहीं है, तो इतनी मजबूत हो जाती है। और अगर इसमें कीचड़ा डालो आग में तो क्या होता है, वो वेपर, ये कार्बन बन करके, धुआं बन करके हवा में उड़ जाता है, धुआं निकलता है ना, तो कीचड़ा जल गया तो वो धुआं बन के उड़ गया, ऊपर गया। तो भट्ठी का काम ही है परिवर्तन करना। बाबा मिसाल देते हैं, देखो मैं धोबी हूँ, भट्ठी में क्या होता है, मैले मैले कपड़े पड़ते हैं, इतने मैले मैले कपड़े पड़ते हैं, और गरम गरम साबुन में कपड़े डालते हैं तो क्या होता है, सारी मैल निकल जाती है, कपड़े इतने साफ स्वच्छ हो जाते हैं। तो भट्ठी द्वारा बहुत कुछ लाभ होता है, वैरायटी तरीके से परिवर्तन होता है, लेकिन लक्ष्य यही है कि शुद्धिकरण हो। इसलिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, स्वाहा करते जाते हैं, मंत्र जाप करते जाते हैं, तो वातावरण में शुद्धिकरण होता है। तो वो भी एक भक्ति मार्ग का तरीका है शुद्धिकरण के लिए। तो हर बात में शुद्धिकरण, तो बट्ठी माना जिसमें शुद्ध हो, पक्के मजबूत बने, स्ट्रांग बने, शक्तिशाली बने, ताकतवर बने, इतने फिर नरम भी बने, हल्के भी बने। तो इसीलिए इस मौन तपस्या भट्टी में आप अपने में परिवर्तन लाने के लक्ष्य से आए हो, और उसमें भी अगर मौन का लक्ष्य होगा तो यह परिवर्तन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मौन के द्वारा शक्ति बहुत मिलती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, बोलना ही नहीं है तो सोचेंगे भी कम, बोलना होता है तो सोचना बहुत पड़ता है, क्या बोलूं क्या बोलूं, बोलना ही नहीं है तो सोचना भी कम हो जाता है, सोचना भी फालतू तो वैसे ही नहीं होता है। हाँ, जरूरी सोचना है, ऐसी बात नहीं कि बोलना नहीं है, लेकिन जहाँ 10 शब्दों के बजाय 2 शब्द में काम हो सकता है तो 4 शब्द भी नहीं बोलने हैं। ऐसे नहीं कि बोलना ही नहीं है, कहीं अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो रह सकते हैं, अगर बहुत जरूरी किससे कारोबार है तो कई चिट्ठी लिख के देते हैं, बोलना नहीं है तो कागज पर लिख करके देते हैं, तो मौन रहता है, आपके ऊपर है। चाहे आप अपने पास चिट्ठियां रखो, किससे मिल बात करनी है तो चिट्ठी में दो, या अगर बोलना भी है तो 10 शब्द न कह करके 4 शब्द की बजाय भी 2 शब्द में बात पूरी कर दो, हाँ या ना बस। कई तो फिर केवल इशारों से कहते हैं, अभी दूसरा समझता नहीं है इशारा क्या दे रहे हैं, तो और ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पता है ना, भाई मुझे मुझे मौन है लेकिन मुझे किसी से कुछ काम लेना है, अब मैं उसको ऐसे ऐसे से कि वो क्या समझेगा तो कहेगा क्या बोलो ना, ऐसे ऐसे से तो ऐसे बिल्कुल समझेगा, अब वो कोई बहरा तो नहीं है जो आप शब्द बोलेंगे तो सुनेगा नहीं, तो बोल भी सकते, नहीं तो व्यर्थ संकल्प दूसरों के वैसे भी चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे, आपके भी चलेंगे, क्योंकि अपने को आप कंट्रोल कर रहे हो कि बोलना नहीं है और इशारे खाली ऐसे ऐसे कर रहे हो, और वो आपका इशारा नहीं समझेगा तो कहेगा भाई बोलो ना, या तो चिट्ठी में लिखे दो, तो गुस्सा भी आ सकता है, हमने तो देखा है कि ये को गुस्सा आ जाता है, मौन किसी और का गुस्सा आता है दूसरे को, भाई तुमको बोलना है कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं बोलो, तो गुस्से में भी वो बोल सकता है, तो किसी को गुस्सा भी नहीं दिलाना है, प्यार प्रेम से भी चलना है, इशारा अगर वो समझ सकता है तो फिर भले शब्दों में नहीं आओ, पर अगर नहीं समझ सकता तो आप समझते हो मौन में रहना है तो लिख के दो, नहीं तो 2 शब्द कह दो, ऐसा स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही बोलना ही नहीं है, पर हाँ एक लक्ष्य ये जरूर है कि सवेरे सवेरे अमृत वेले 8 बजे तक तो बिल्कुल ही मौन रहे। सवेरे उठकर अमृत वेला योग करते हैं और फिर क्लास में आते हैं, तो 8 बजे तक जब तक क्लास में है तब तक बिल्कुल मौन धारण हो, फिर चलो थोड़ा सा बोलना पड़ता है, कारोबार तो होता ही है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, अपने काम काज में आप लग गए तो और बात है, तो आपका जो टाइम टेबल होगा वो तो विजय बहन रात को बताएंगे, रात को भोजन के बाद, तो रात को भोजन के बाद आपको 4 दिन की पूरी दिनचर्या सुनाएंगी, परंतु ये जरूर है कि बहुत कुछ भर कर जाना यहाँ से, ऐसा लक्ष्य रखो कि मेरे अंदर जो भी कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई भी ऐसा विघ्न है, कोई समस्या है, कोई ऐसा बंधन है, ये सब जो भी नेगेटिव बातें हैं जो आत्मा को उड़ने में विघ्न बनते हैं, उड़ने नहीं देते हैं, भारी कर सकते हैं, उनको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि यहाँ वो बातें नहीं है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है, कुछ भी है, वो सब वहीं छोड़ कर आए ना कि यहाँ लेकर आए? यहाँ तो नहीं लेकर आए ना। हमें तो कई बार बड़ी हंसी आती है, कई भाई बहने कहते हैं तो यहाँ आकर के भी इतनी चिंता में रहते, इतनी चिंता में रहते हैं। तो मैं पूछती हूँ क्यों? यहाँ तो प्रसन्न रहना है, प्रफुल्लित रहना है, यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो कहते हैं हमको ये आता है, मैं वापस जाऊंगी तो ये स्थिति पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी जो यहाँ पर है, वहां रहेगी या नहीं रहेगी? अरे वहां की बात अभी क्यों सोचते हो? वो तो वहां जाकर के देखना ना। यहाँ तो आप शक्ति भरो, तो अगर आपकी यहाँ शक्ति भर जाएगी तो ये शक्ति वहां काम आएगी। अब यहाँ है तो वहां की बातें याद कर रहे हो, पता नहीं वहां चल पाएगी ये स्थिति या नहीं चल पाएगी। फिर वहां जाएंगे तो सोचेंगे वहां तो बहुत अच्छा था। तो वहां जाएंगे तो यहाँ की याद आएगी, यहाँ है तो वहां की याद आती है। तो न यहाँ का लाभ ले सकेंगे तो न वहां ही आप पूरा ध्यान दे पाएंगे। तो इसीलिए जहाँ होना होता है वहां का पूरा लाभ लेना है, और जो आपको करना है वो सोचना है। कई बार सोच कुछ और है, बोल कुछ और है, कर्म कुछ और है, पता नहीं कहाँ है वो व्यक्ति, पता ही नहीं चलता है। मन बेलगाम घोड़ा होकर के भटकता रहता है और कहता कुछ और है। अभी क्या कहा, अरे पता नहीं क्या कहा मैंने, क्योंकि सोच कुछ और रहा था, फिर कर कुछ और रहा है, करना कुछ और था, कर रहा है कुछ और, क्योंकि मूंझा हुआ है। लेकिन नहीं, जो सोच है वही कहें, वही कर्म में हो। अभी यहाँ बैठे हैं तो और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, घर की बिल्कुल याद ना आए। जो होगा वो तो होगा ही, जैसे ड्रामा में निश्चित होगा होगा। बच्चे क्या कर रहे होंगे, पोतरे दोतरे क्या कर रहे होंगे, धंधा कैसे चलता होगा, फलाने को ये काम दिया था पता नहीं करेगा नहीं करेगा, ये तो नहीं सोच चलेंगे ना। अच्छा जैसे भी ये करेगा ना, आपके यहाँ सोचने से वो करेगा क्या? अगर सचमुच वो नहीं करेगा तो आप यहाँ से वाइब्रेशन दो ताकि वो करे। ये नहीं पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, वो तो है ही ऐसा, फिर वो तो है ही ऐसा, वो तो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, देखना मैं जाऊंगा ना उसने नहीं किया होगा। अभी आपने यही सोच लिया नहीं किया होगा तो है? वो करेगा भी नहीं, और सचमुच ऐसे होगा। और आप वहां पहुंचेंगे, आप कहेंगे देखा मैंने कहा ना ये नहीं करेगा। तो पहले ही कह दिया तो वही वाइब्रेशन उसको पहुंच गए तो क्यों करेगा वो। लेकिन अगर समझो कोई फुरना है भी, कोई बात चिंता है भी, तो संकल्प करो जरूर करेगा, जरूर करेगा। हाँ बाबा उसको शक्ति मिले वो करे, तो आपका भी एक पॉजिटिव सोच होगा तो उसको भी संकल्प आएगा मुझे करना ही है जब तक आप पहुंचे। लेकिन यहाँ उसका चिंतन नहीं करना, यहाँ बार बार उसके बारे में सोचना नहीं है, यहाँ तो कमाई करनी है। इसलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा, सवेरे की मुरली सुनी है? मुरली सुन के आए सभी? मुरली सुन के आए आज की सभी? जिन्होंने नहीं सुनी आज की मुरली हाथ उठाए। अच्छा देखा, थोड़े थोड़े हैं। तो बाबा ने आज मुरली में विशेष कहा, देखो बच्चे मधुबन में आते हैं बस आठ दिन। उस समय मधुबन में बच्चे आते थे बाबा के पास, तो बाबा कहते आठ दिन, एक हफ्ता सप्ताह का कोर्स, फिर वापस जाना है। आप जाएंगे तो दूसरे आएंगे, तो आपको तो अभी इतने 8 दिन की जरूरत नहीं, 4 दिन। बस 4 दिन ही बहुत है, उसमें आप भर जाएंगे। तो बाबा कहते मधुबन क्या है, पावर हाउस है। पावर हाउस से करंट लेते हैं, अपने मोबाइल को आप चार्ज करते हो ना, तो पावर हाउस के साथ जोड़ते हो, चार्जर में डाल, चार्जर डाल के चार्जर कनेक्ट करते हो तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो मधुबन है पावर हाउस, इस पावर हाउस से आत्मा में शक्ति भरनी है और फिर वहां जाकर के यूज होना है। फिर सारा दिन चार्ज कहाँ होता है, सवेरे किया या रात को किया, फिर सारा दिन उससे चलता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये मधुबन पावर हाउस है। फिर बाबा कई बार कहते हैं मधुबन क्या है, सागर का कंठा है। तो सागर के कंठे पर क्या होता है, बादल भरते हैं। आप देखेंगे सागर के ऊपर सदा बादल होते हैं, सदा ही बादल होते हैं। तो वो सूरज की किरणें सागर के जल को बाफ बनाती है और वो ऊपर जाती है बाफ और वो पानी जाता है, फिर वो बादल बनते हैं, फिर बरसते हैं, दूर दूर जाकर के बरसते हैं। तो बाबा कहते हैं बादल आते हैं सागर के किनारे आते हैं और सागर से पांच जल भर करके भरपूर होकर के जाके बरसना है। क्योंकि दुनिया बहुत अभी कलराठी बन गई है, एकदम बंजर बन गई है, धरती भी बंजर बनती जा रही है, तो आत्माएं भी शक्तिहीन होती जा रही है। माया का प्रभाव तो बहुत बढ़ता ही जा रहा है। माया ये भी सोचती है कि मेरे जो मुरीद हैं, मेरे जो ग्राहक हैं, वो भगवान के क्यों बने। आज भी बाबा ने कहा कि देखो राम राज्य और रावण राज्य, इस संगम पर राम राज्य स्थापना करने के लिए राम आते हैं, तो वो भी संगम पर आते हैं और रावण भी संगम पर आता है। तो रावण कौन से संगम पर आता है, त्रेता और द्वापर के संगम पर आता है, और शिव बाबा भी संगम पर आता है, लेकिन वो कलयुग और सतयुग के संगम पर आता है। आते दोनों संगम पर ही है और दोनों ही शक्तिशाली है, दोनों ही बलशाली है। इसीलिए माया से सदा हमारी युद्ध है, माया छोड़ती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। पर उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि हाँ अंत में तो बनेगी ब्राह्मणों की माला, अंत में जरूर बनेगी, क्योंकि सब स्थिर हो जाएंगे, कर्मातीत स्थिति को पाते जाएंगे तो माला तो बनी जाएगी, पर अभी नहीं बन सकती है क्योंकि ये रेस चल रही है और ये लंबी दौड़ है। जैसे लंबी रेस होती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे ये आगे जाएगा, लेकिन लंबी दौड़ है तो बीच में वो अटक जाता है, फंस जाता है। और उस लंबी दौड़ में भी कई प्रकार की दौड़ होती है, बीच बीच में वो रुकावटें भी रखते हैं, रखते हैं ना, हर्डल रेस उसको कहते हैं। तो भाई वो क्या सैक देते हैं कि इसको पहन करके चलो, फिर दो व्यक्ति मिल करके तीन पैर बना करके चलो, या लींबू को मुंह पर रख करके चलो, तो कुछ न कुछ काम देते हैं, तो वो भी करना होता है, केवल दौड़ना नहीं होता है। तो जो उसमें होशियार होते हैं वो तो फटफट कर लेंगे, और जो नहीं होशियार होंगे वो तो भले दौड़ने में होशियार है लेकिन वो काम करने में होशियार नहीं है। कहेंगे कि अभी ये सुई है ना, इसमें धागा परो डालो, और धागा डाल करके ये लेकर के सामने वाले को देना है, मतलब कोई काम देंगे। तो जो हाथों से होशियार होगा, टांगों से तो होशियार है, पर हाथों से भी होशियार हो, तरीका उसको आता हो, तो वो जल्दी जा सकेगा आगे। तो इसीलिए कई प्रकार के विघ्न माया डालती है और अलग अलग रूपों से माया आती है, ऐसे नहीं कि केवल एक ही रूप से आती है। तो वो भी जो हर्डल रेस, ऑब्स्टिकल रेस होता है, जो बीच बीच में रखते हैं चीजें जिसको क्रॉस करना होता है, वो भी भिन्न भिन्न होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो माया भी भिन्न रूप से आती है। एक बार माया आई, चलो हमने पार कर दिया, तो हम यही सोचते भी माया इसी रूप में आएगी, लेकिन दूसरी बार उसी रूप में नहीं आएगी, हा? वो दूसरे रूप से आएगी। फिर आप सोचेंगे अरे पहले तो फिर भी सहज हो गया, ये तो कठिन है, और अब तीसरी बार और उनसे भिन्न रूप से आएगी तो और कठिन लगेगा। इसलिए ब्राह्मणों की माला बनती नहीं है। तो बहुत आगे जाने वाले पीछे रह जाते हैं और पीछे आने वाले आगे चले जाते हैं। इसीलिए बाबा वरदान भी अलग अलग देते हैं। जो पुराने हैं वो तो बहुत पुरानी है, बाबा मम्मा की पालना लिए हुए हैं, लेकिन बहुत लंबा समय चले है ना, तो कई बार थक भी जाते हैं, बहुत लंबा समय चले हैं। अगर वो सचमुच इतने ध्यान से चले होते तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए, कि जैसे हमारी दादियां हैं। परंतु अगर ध्यान कहीं और बट गया, कहीं और चला गया, तो फिर चाहे कितने भी पुराने हो तो भी इतनी शक्ति नहीं भर पाते हैं। पर फिर भी पुरानी है, माया से लड़ते 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 अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जरूर उनका सम्मान तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए पुरानों को बाबा दूसरा वरदान देते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वो सोना है, बिकॉज इट कैन मोल्ड। जो सोना होता है, अगर वो सच्चा सोना है तो वो मोल्ड हो जाता है, वो मुड़ सकता है सहज। जिसमें खाद होती ना, वो मुड़ता नहीं है सोना। जो सच्चा सोना होता है वो नरम होता है, वो उसको मोड़ सकते हैं, हल्का भी होता है, और वो जो जिसमें खाद पड़ी है वो भारी भी हो जाता है। तो इसीलिए पुरानी है माना बहुत सहन किया है, बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत विघ्नों को देखा है, अनुभवी आत्माएं हैं, तो इसलिए ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि वो मुड़ सकते हैं। परंतु नए आए हैं तो वो कहते हम तो बहुत लेट आए हैं, हम बहुत लेट आए हैं, अभी हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, नयों को फिर बाबा दूसरा वरदान देते हैं, कौन सा, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो ये वरदान मिल जाता है। तो इसीलिए नयों को ये वरदान मिलता है, तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, भले लेट आए हैं लेकिन आप पहले जा सकते हो, आगे जा सकते हो, पुरानों से भी आगे जा सकते हो। कई कहते ना, बाबा हम पहले आए होते तो हम तो कितना आगे गए होते। तो बाबा कहते अच्छा है लेट आए हो। अच्छा है लेट आए हो, पता नहीं इतना बहुत पहले आए होते तो माया खा भी गई होती, तो इसीलिए चले भी गए होते, क्या पता। अभी तो अनुभवी होकर आए हो ना, दुनिया का अनुभव करके आयो, तो दुनिया का अनुभव जो करके आते हैं वो तो पक्के होंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इस भट्टी में बीच बीच में मौका देते हैं, ताकि फिर से अपने आप को रिवाइव करो, अपने आप को फिर से। अपने बाबा ने कल भी कहा कि तुम व्यापारी हो, व्यापारी क्या करते हैं, अपने मुरादी संभालते हैं। मुरादी मालूम है ना, हिसाब किताब, लेखा जोखा, घाटा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, कितना गया, कितना आया, कितना बचा, वो सारा वो उसका पोता मिल रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी बहुत बड़े व्यापारी हो, और देखो तुम्हारा भी व्यापार किसके साथ है, स्वयं भगवान के साथ है, भगवान के साथ। आज बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, भगवान बाबा तुम्हारा कर्जदार है। कई ऐसे लगता है बाबा कैसे हमारा कर्जदार है, दुनिया में तो बच्चे कर्जदार होते हैं ना, माँ बाप के, बच्चे के लिए, भाई माँ बाप के लिए कहा जाता है मातृ ऋण पितृ ऋण, वो ऋण होता है बच्चे के ऊपर, जो माँ बाप ने जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, लायक बनाया। और तो बच्चे का फर्ज है कि माँ बाप की पालना करना, और यहाँ तक कि भाई अगर गुजर जाता है माँ या बाप तो अग्नि मुख अग्नि देना, माना ये फर्ज बन जाता है, ये ऋण है बच्चे के ऊपर कि उस बच्चे को वो ऋण पूरा करना है। और मरने के बाद भी वो ब्राह्मण खिलाना, पिंड भरना, ये सब ऋण है, तो बच्चे पर ऋण होता है। और यहाँ बाबा कहते हैं बाबा कर्जदार है, बाबा पर ऋण है, कौन सा ऋण, बाबा पर है। हाँ, बाबा को हम तन मन धन से मदद करते हैं, परम धाम से तो धन नहीं लाएंगे ना बाबा, हम बच्चे ही ले करेंगे, हम बच्चों के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना बाबा कर रहे हैं, तो बच्चों का ही तन मन धन लगेगा। और जो बच्चे तन मन धन से सेवा करते हैं इस विश्व के परिवर्तन के लिए, तो वही फिर राजा ही करते हैं। तो इसलिए इतने तो बाबा कर्जदार बन जाता है, जो उनको राजाई देनी पड़े, क्योंकि बच्चे तन मन धन से मददगार बनते हैं। लेकिन बाबा ने फिर ये भी सावधान किया कि बच्चे मददगार तो बनते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैंने दिया, कभी नहीं सोचना चाहिए मैंने दिया। क्यों? हाँ, लेते कितना हो तो उसकी भेंट में देते क्या हो, कुछ भी नहीं है। क्या है हमारे पास? देखो, विकारी तन है, तन भी विकारी है, कोई बहुत पावन शरीर थोड़ी है ये। कितना विकारी, बीमारियों से भरपूर, कीड़े मकोड़े, कीड़े जीव जंतु तो पता नहीं कितने होंगे शरीर में, बैक्टीरिया वायरस पता नहीं क्या क्या होगा। भले बाहर से कितने भी साफ सुथरे, लेकिन है तो तमो प्रधान प्रकृति ना, तो विकारी तन है। फिर मैला मन, कितने गंदे गंदे विचार अभी तक भी आते हैं। इतने थोड़ी कोई देवता जैसे बन गए हैं, तो क्योंकि पुराने संस्कार तो 63 जन्मों के हैं, बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी सब खत्म हो गए, फिर तो कर्मातीत बन जाएंगे बाबा कहते हैं। इसलिए थोड़ा मैला तो है मन, और धन भी देखो विनाशी तो है, आज है कल नहीं रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम उसको सफल करते हो, बाबा को क्या देते हो, क्योंकि बाबा तुमको कितना गुणा करके देता है, इसलिए बाबा तुम्हारा कर्जदार बन जाता है। देते कुछ भी नहीं हो पर लेते कितना हो। तो कोई बच्चा ऐसे नहीं कहे कि मैंने तो इतना किया, मैं तो इतना करता हूँ, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने कैसे बाबा का कार्य चल रहा है, कैसे बाबा का भंडारा भरता है, कैसे सब यूज होता है, कैसे ये यज्ञ चलता है, वो बाबा ही जाने। लेकिन हम जितना करेंगे उतना हम भाग्य पाएंगे। बाबा कर्जदार बन जाता है, जरूर देगा, हमको छोड़ दे नहीं देगा। तो कैसे बाबा बंधा हुआ है, हमको साथ भी ले जाएगा। दूसरे जो गुरु होते हैं, भले कोई कहता मैंने इसको गुरु किया, लेकिन वो गुरु चला गया तो शिष्यों को लेके जाएगा, वो समझा उसको मोक्ष मिल गया, कोई कहे तो चेले तो वही है, उनको तो लेके नहीं गया। पर बाबा ने संकल्प दिया है, प्रतिज्ञा की है, भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं बच्चों को साथ ले जाऊंगा, अंत तक पढ़ाऊंगा, साथ ले जाऊंगा, पावन बना के, गुलगुल बना के, बड़ा प्यारा शब्द बाबा ने कहा, गुलगुल बनाता हूँ, फूल समान खुशबूदार बनाता हूँ, और मैं सबको वापस ले जाता हूँ। तो इतना प्यार करेगा कौन, बाबा करता जितना। तो सचमुच उसी प्यार में खो जाओ, इसीलिए आप इस भट्टी में आयो। ये याद वो प्यार के का रूप है, मेहनत नहीं है, पर मोहब्बत का रूप है। मोहब्बत में मेहनत भी, मेहनत नहीं लगती है। एक मिसाल देते हैं, विवेकानंद का मिसाल देते हैं कि एक बार विवेकानंद कोई चढ़ाई चढ़ रहा था, पैदल चल रहा था, तो थोड़ी चढ़ाई थी, तो उसने देखा एक स्त्री, एक माता अपने बच्चे को ऐसे नहीं कंधे मानो कमर में उसको पकड़ के लेके जा रही थी। तो बच्चा था, छोटा था, लेकिन बहुत मोटा था, मतलब भारी होगा, तो चढ़ भी रही थी और हाँप भी रही थी, मतलब उसको वो चढ़ भी रही थी बच्चे को लेकर के। तो विवेकानंद उसको देख रहा था, कह रहा, तो उसने ऐसे ही कह दिया, माता पर दया आई, और बच्चा को इतना छोटा नहीं था जो चल नहीं सकता था, होगा 3-4 साल का। तो उसको कहा, माता जी आप बच्चे को ना उसको चलाओ ना, आप इतना मुश्किलात हो रही है आपको क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो आप इसको चलाओ ना, इतनी बोझ को लेके क्यों चढ़ रही हो, इतना बोझ लेकर क्यों चढ़ रही हो। तो जैसे उस माता ने सुना बोझ को लेकर चढ़ रही हो, उसने कहा ये बोझ है, ये तो मेरा बेटा है। वो अपना बेटा समझ करके उसको उसको उठाया है और चल रही है, ये थोड़ी समझ रही है कि ये बोझ है, भले हाँप भी रही है और उसको लग भी रहा है कि मुश्किलात हो रही है ऊपर चढ़ने में, चढ़ाई थी, लेकिन उस कहती ये बोझ थोड़ी, तो मेरा बेटा है। तो बेटा माना प्यार है, तो जहाँ प्यार है वो मेहनत मेहनत नहीं लगती है, वो मोहब्बत लगती है। तो बाबा भी कहते हमारा प्यार बाबा के साथ है, तो जहाँ जिससे प्यार होता है उसी को ही तो याद करते हैं। हाँ, प्यार नहीं होता है तो याद नहीं करेंगे, तो इसीलिए बाबा से ही हमारी सच्ची प्रीत है। और यहाँ तक प्रीत है जो बाकी सब तरफ से बाबा कहते प्रीत हटाओ, देश है देह के सब संबंधों को धर्मों को भूलो, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। आज भी बाबा ने कहा सब संबंध मेरे साथ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बाकी जो औरों के साथ संबंध है वो केवल आत्मा आत्मा भाई भाई बस, और कोई संबंध नहीं है, बस भाई भाई का ही संबंध है, बस इतना ही आत्माओं के साथ संबंध है। बाबा ने उस दिन भी कहा सबको बस आत्मा ब्रिकुटी में देखो, बस और कहीं में मत देखो। भट्टी में आए हो तो बस यही करना है कि अगर किसको देख भी रहे हो बस आत्मा देखो, आत्मा देखो। रोज की मुरली में बाबा कितना ध्यान खिंचवाते हैं कि हर एक को उस आत्मा की दृष्टि से देखो, मस्तक पर चमकती हो ये आत्मा मणि, तो ये जो आपको मस्तक पर तिलक लगाया ये आत्मस्थिति का तिलक है, तो खुद भी उस आत्मस्थिति में रहना है और दूसरों को भी उसी आत्मा की दृष्टि से देखना है। तो क्या होगा, कोई न देहभान आएगा न कोई अंतर महसूस करेंगे, क्योंकि सबकी ब्रुकुटी एक जैसी है, हा? मस्तक एक जैसा है ना, मस्तक से थोड़ा नीचे आएंगे तो अंतर है, हा? फलाने की आंखें देखो कैसी है, हा? फिर कहेंगे फलाने का नाक कैसा है, हा? फलाने के कान कैसे है, फलाने का होंठ कैसा है, और नीचे आओ तो फिर रजो तमो स्थिति और, लेकिन मस्तक कोई देखो तो सबका मस्तक एक जैसा है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है ना, सबका मस्तक फ्लैट है, बाकी हाँ किसके बाल नहीं होंगे तो ज्यादा बड़ा मस्तक दिखेगा लेकिन है तो फ्लैट ना, सीधा है, तो इसीलिए बाबा कहते बस वहीं देखो और किस कहीं नहीं देखो, तो आत्मिक दृष्टि रहेगी तो और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो आपकी दृष्टि भी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, और आत्मा आत्मा भाई भाई है उसी नजर से देखेंगे तो उसके गुण ही दिखाई देंगे, किसी के अवगुण भी नहीं दिखाई देंगे, तो आपकी स्थिति भी बहुत ऊंची रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस मौन भट्टी में तपस्या भी करनी है, मौन में भी रहना है और पकना भी है, सब संबंध मेरे बाबा से है, किसी और देहधारी को बिल्कुल चार दिन तक तो भूल ही रखना है, मोबाइल वोबाइल नहीं यूज करना, सबके मोबाइल स्विच ऑफ है ना, है स्विच ऑफ कि खुले है, मोबाइल स्विच ऑफ है ना, बिल्कुल बंद, सबको घर में कह के आई ना कि चार दिन मेरे को फोन नहीं करना, कह के आई या नहीं कह के आई, अगर नहीं कह के आई हो तो आज रात तक आपको छुट्टी है, भले आज रात को फोन में बोल दो कि चार दिन मेरे से बिल्कुल बात नहीं करना, मैं बिल्कुल दूसरी दुनिया में हूँ और मुझे कोई फोन नहीं करे, और मैं स्विच ऑफ करके रखूंगा, क्योंकि हमारी यहाँ मौन तपस्या भट्टी है, इसलिए मैं इसमें जैसे योग अग्नि के अंदर पकने वाला हूँ, तो बिल्कुल ही मैं शक्तिशाली बन करके आत्मा निकलूंगी और वापस मैं आऊंगी, मैं अपने आप कुछ भी काम होगा मैं करूंगा या करूंगी, आप नहीं करना, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होगा। घर में बता के आयो या बताना है, बता दिया, जिसने बता दिया घर में वो हाथ उठाओ। अच्छा, भानु बहन ने सबको तैयार कर दिया है पहले से हाँ भानु बहन बहुत अच्छी टीचर है ना, हाँ मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं आई हूँ अभी कुछ दिन पहले, कितना समय हुआ, जनवरी मास में मैं आई थी खास, अच्छा दो दिन से यही सूचना दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो इसीलिए वैसे ही सब तैयार होके आए हैं, तो उसी तैयारी से आप आए हैं, तो वही जितनी तैयारी अच्छी होती है उतनी सफलता भी अच्छी मिलती है, तो जरूर मधुबन में आप आए हो, एक एक क्षण का आप सदुपयोग करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना संगम की एक घड़ी एक सेकंड भी कितना अमूल्य है, तो ये चार दिन आपके एक एक घड़ी इतनी अमूल्य है, उसको बुद्धि में रख करके इसका पूरा सदुपयोग करेंगे, पूरा लाभ लेंगे, तो यही उद्देश्य रख करके आप ये 4 दिन मौन भट्ठी रखना, एक बाबा दूसरा न कोई, बस उस बाबा की याद में, उनके प्यार में, उनके गुणों में, उनसे शक्ति लेते हुए उनसे बातें करो बाबा से, और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आप जरूर करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो बहुत अच्छा, अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। शशि बहन आ गए जी, तो जरा पूछो, देखो आ गई होगी वो, कहाँ है शशि बहन? हाँ, तब तक दिनचर्या आप सुना दो, तो फिर हम मिलेंगे, क्योंकि हमारे कितने बड़े महारथी भाई बहने यहाँ कहाँ बैठे, महारथी भाई बहने आपके क्लासेस भी कराएंगे, आपको इतना समय देंगे, बहुत ही लकी हो कि कितने सारे हैं यहाँ भाई बहने जो आपकी क्लासेस कराएंगे। और यहाँ भी सब तरफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपको ये भी मालूम हो, शांतिवन में शिविर चल रही है, करीब 4,000 भाई बहने महाराष्ट्र से आए हैं शिविर करने, वो आपने देखे होंगे ना दोपहर को, बहुत सारे भाई बहन ये सब महाराष्ट्र के, कल जाने का दिन है, ज्ञान सरोवर में वहाँ पर सिक्योरिटी विंग की ये विंग का प्रोग्राम अभी शुरू होगा 2 दिन में, और आप यहाँ पर है तो शांतिवन में भी प्रोग्राम, ज्ञान सरोवर में भी प्रोग्राम, पांडव भवन में भी प्रोग्राम, तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, और इसके अनुसार बाबा की सेवा तो दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ी रही है। हमने देखा 4,000 जबकि 3,000 को आना था, तो हमने टीचर से पूछा आप लोग इतने सारे कैसे आ गए, क्योंकि कंट्रोल करना मुश्किल, 3,000 का लक्ष्य था भाई, शिविर माना कितने हजार चाहिए, नहीं तो 10,000 भी आ सकते हैं भाई, इतने 10 लोग ही आपको आने, तो 10 के बदले 20 आ गए, 20 जिनको कहा तो 50 आ गए भाई, ऐसा क्यों? तो कहते क्या करे बहन जी, मानते नहीं है, हमको जाना है हमको जाना है। तो बाबा की सेवाएं भी बढ़ती जा रही है, बाबा को खुशी भी होती है कि बाबा के बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, अभी विजय बहन आपको सुनाएगी, फिर हम मिलेंगे, ठीक है? ओम शांति,
ओम शांति। बधाने लक्ष्य पाकू मड़ी गयू, मन नी स्थिति ने तैयार करवा माटे एमणे घणी बधी सारी सारी वातो आपणने संभळावी। पावर हाउस मां आव्या छो तो पावर भरीने जवानुं छे, आत्माने तपावा आव्या छीए, शुद्ध करवा आव्या छीए, तो जे कई लक्ष्य आजे आप्युं छे ए लक्ष्यने आपणे वारे घड़िए याद करवानुं छे कि सेना माटे आपणे आव्या छीए अने केटलू भरपूर थईने जवानुं छे। कारण के बधा ज महारथी भाई बहनों विशेष आपणा माटे समय काढीने आवशे अने आपणे पण त्यांथी समय काढीने आव्या छीए, तो आपणो समय अने आपणी शक्तिओ सफळ थाय, एक एक मिनिट आपणो सफळ थाय, आपणा दरेक श्वास सफळ थाय, कारण के लक्ष्य वगर लक्षण क्यारे नहीं आवे। एटले लक्ष्य मजबूत छे, लक्षण आवता जसे अने अनुभव वत्तो जसे। आम तो मधुबननी दिनचर्यानो बधाने ख्याल ज होय छे, 3:30 सवारे गीत वागशे, बधाए उठवानुं, 4 થી 4:45 સુધી યોગ હશે, 4:45 પછી બધાએ તૈયાર થઈને ઓમ શાંતિ ભવનમાં મુરલી સાંભળવા જવાનું, અને ત્યાંથી મુરલી સાંભળીને આપણે અહીં આવીને નાસ્તો પાણી કરીશું, એના પછી આપણી જે આવતીકાલની દિનચર્યા છે એમાં આપણો દિવસ જે છે એ આત્મ અભિમાની સ્થિતિ દિવસ છે, એટલે આખો દિવસ આપણે આત્માભિમાની સ્થિતિમાં રહેવાનું લક્ષ્ય અને પુરુષાર્થ રાખવાનું છે। 9 થી 10 સવારે બાબાના રૂમમાં યોગ બધાએ કરવાનો છે વારાફરથી. 10 થી 10:30 યોગ અહીંયા થશે. 9 થી 10 બાબાના રૂમમાં બેસો, ઝૂંપડીમાં બેસો, બગીચામાં બેસો, જ્યાં પણ, પણ મૌનમાં રહીને એ અભ્યાસ રહે એ બધાનું લક્ષ્ય હોય. અને 10:30 થી 11:30 સવારે કાલે રામનાથભાઈનો ક્લાસ છે અને એમનો વિષય છે શ્રીમત સે સેવા. અને પછી 12:45 થી 1 વાગ્યા સુધી આતમ પ્રકાશભાઈનો ક્લાસ છે. એનો વિષય છે વર્તમાન સમય કી આવશ્યકતા મનસા સેવા. 1 વાગ્યા પછી ભોજન, ભોજન પછી વિશ્રામ અને સાંજે 4:30 થી 5 બાબાના કમરામાં યોગ. 5 થી 5:30 અહીંયા યોગ રહેશે. 5:30 થી 6 ક્લાસ ઉર્મિલાબેનનો છે. એમનો વિષય છે જ્વાલામુખી યોગ. 6:30 થી 7:30 ફરી યોગ રહેશે. અને રાત્રે 9:45 થી 10 મોહનભાઈ સિંગલનો ક્લાસ રહેશે. અને એ છે બ્રહ્મા બાબા કી અંતિમ સ્ટેજ. એટલે આવતીકાલે આપણી આ દિનચર્યા છે. સમયસર આપણે અહીંયા હાજર રહીએ અને પૂરેપૂરો ક્લાસનો લાભ લઈશું. અને 20 તારીખની દિનચર્યા પછી કાલે સંભળાવીશું. ઓમ શાંતિ. બધા જ્યાં રોકાયા છે ત્યાં બધાને બરાબર છે? બધી સગવડ છે? અચ્છા. અને કોઈને પણ કંઈ શારીરિક તકલીફ થાય તો આપણું દવાખાનું પણ છે, ત્યાં દવા લઈ શકો છો. અને જે બીમાર હોય પોતે ના કઈ કહેવા આવી શકે, પણ એમના રૂમ પાર્ટનર હોય આપણા બેનને, ભાનુબેનને કે બાબુભાઈને જરૂર ધ્યાન પર આપે કે ફલાણા ભાઈ કે બેન બીમાર છે. શશીબેન આવે ત્યાં સુધી આપણે બાબાની યાદમાં બેસીશું. ઓમ શાંતિ. સબસે પહેલે હમ સભી શશી બહેન જી કા એક હાથ કી તાલી સે દિલ સે સ્વાગત કરતે હૈ, સ્વાગત કરતે હૈ, સ્વાગત કરતે હૈ. શશી બહેન જી પાંડવ ભવન મે રહેતે હૈ, પર કેવલ પાંડવ ભવન, જ્ઞાન સરોવર યા શાંતિવન કી સેવાએ નહીં, પરંતુ સારે વિશ્વ કી સેવાઓ કા ધ્યાન આપ યહાં બેઠે હુએ ભી કરતે હૈ. ઓર અભી ભી હમને દેખા કિ ઉનકો હમારે પાસ પહેલે આના થા, પર ઇતને વ્યસ્ત હૈ સેવાઓ મે, પરંતુ ફિર ભી હમ સબ ઉનકે પાસ આયે હૈ, તો વિશેષ વો હમારે લીએ આજ સમય નિકાલ કર આયે હૈ, તો ફિર સે હમ ઉનકા સ્વાગત કરતે હૈ. શશીબહેન જી લગભગ પિછલે 50 વર્ષો સે યહાં હી મધુબન મે દાદીજી કે સાથ રહેકર મેં તો શરૂ સે દેખતી આઈ હું, દિલ સે और लगन से सेवाएं करते आ रही हैं. और देखो वो ही सेवा की दुआएं आज इनको दौड़ा रही हैं. कभी यहां तो कभी वहां. तो हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि उनका लाभ हमको यहां मिलेगा, डबल लाभ मिलेगा. अपने हाथों से वो सभी को टोली भी खिलाएंगे। शशि बहन जी,
ओम शांति। बाबा के घर में, प्यारे प्यारे बाबा की गोदी में, बाबा के दिल तख्त पर नशीन बच्चों का बाप दादा, दादियां और सभी वरिष्ठ भाई बहने, मधुबन निवासी भाई बहने, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ मैं ये देख रही थी कि अहमदाबाद बापू नगर के भाई बहनों ने इस सीजन का पहला मौका ले लिया, और जो पहला मौका लेता है तो बाबा उसको और भी बहुत कुछ प्राप्तियां कराता है। तो आज का दिन हम सबके लिए कितना ना श्रेष्ठ दिन है कि बाबा की कर्म भूमि, दादियों की स्नेह की भूमि, बाप दादा के साथ साथ सभी दादियां, वरिष्ठ भाई बहनों ने इसी पांडव भवन के आंगन में बैठ करके न जाने कितनी आत्माओं को ज्ञान और योग के द्वारा सिंचन करते हुए बाबा के चैतन्य फूल बनाया, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है साकार में बाबा घंटों घंटों दिन और रात तपस्या करते, और यही एक स्थान है पांडव भवन के आंगन में खड़े होकर के बाबा कहते थे, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे सिक्की लदे बच्चे, और बाबा सब बच्चों आओ आओ करते थे, और आ करके ऐसा नहीं आओ आओ करते थे, लेकिन साथ में जैसे बाबा उनको बुलाते इतना स्नेह से भरपूर कर देते, स्नेह के साथ साथ वरदानों से भरपूर कर देते थे। तो वो सीन आज भी हमारे आंखों के सामने घूमता है और बाबा के स्नेह की लहरें हमको भरपूर करती हैं। तो जब आप पांडव भवन के आंगन में खड़े होंगे तो हो सकता आप में से कईयों ने साकार बाबा को तो देखा ही नहीं है, लेकिन बाबा वो अनुभव जरूर कराता। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं मैंने नहीं देखा है, अरे बाबा कहते मैंने तो देखा है, मैंने ही तो बुलाया है, मैं ही तो तुम्हारी पालना करता हूँ। बाबा कहते मैं बच्चों को ज्यादा प्यार करता हूँ, और बच्चे कितने वंडरफुल हैं, बाबा के सामने बैठ करके बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते। ऐसे बच्चे कहीं देखे? बाबा की गोदी में बैठे, बाबा के सामने बैठे, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा वरदानों से भरपूर कर रहा है, और बच्चे इतने नटखट, इतने वंडरफुल, और बाबा को कहते बाबा हम आपको याद कैसे करें, हम आपको भूल जाते हैं। तो आज जो आप भट्टी में आए हैं, एक बात का पक्का करना है, कभी भी ये कंप्लेंट ना हो कि बाबा हम आपको भूल जाते। दूसरा, बाबा की याद के लिए इधर उधर कहीं नहीं घूमने का, कैसे याद करें, किसी ने ये चार्ट दे दिया, दूसरे ने ये चार्ट दे दिया, तीसरे ने कहा ऐसा चार्ट लिखो, चौथे ने कहा ऐसा लिखो, वो चार्ट प्यार का लिखो, लेकिन जगह जगह भाइयों के पास या बहनों के पास जाकर के जो चार्ट लिखने का, वैसे बाबा ने कहा स्नेह में खोजो। बाबा को कितने समय याद किया, अभी देखो फिर याद करते, फिर आपसे बात करेंगे। तो प्यारे बाबा ने, दादियों ने आप सबको अपने ही घर में बहुत स्नेह से बुलाया है, तो हम सब बाबा की यादों में ही खोए रहेंगे। बाबा की वरदान भूमि में आए हैं, अनेक वरदानों से अपने आप को भरपूर करेंगे, साथ साथ इस बात का ध्यान रखेंगे हर समय बाबा को अपने दिल में समा के रखेंगे, आपने बाबा को दिल में समाया या बाबा ने आपको दिल में समाया, अब ये बताओ मेरे को, आपने समाया या बाबा ने समाया? दोनों ने समाया। और वंडरफुल काम आज आपने क्या किया, या दिल का भी वो बैज लगा दिया है, और उसमें भी हर एक को स्लोगन मिला हुआ है। एक स्लोगन दिल, तो देखो अभी आपको ट्रिपल दिल मिल गया है, एक तो बाबा के दिल में बैठे हो, दूसरा आपने बाबा को दिल में समाया है, तीसरा एक दूसरे को देखेंगे तो ये ध्यान में रहेगा कि जब बाबा दिल में समा गया तो कभी भूल नहीं सकता। बाबा को दिल में समा लिया तो ये हम कभी कह ही नहीं सकते कि योग लगता ही नहीं है, योग मेरा टूटता है। उसके लिए बाबा ने क्या सहज तरीका बताया है, इतना सहज तरीका बताया है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने सारे विश्व में से हम सबको चुना, और चुना भी किसको है, बाबा के भोले वाले बच्चों को, बाबा ने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, कलप पहले वाले बच्चों को। तो इसलिए ये पक्का करना है कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा, तो ये पक्का इस भट्टी में करके जाना है। और जब अपने घर जाएंगे तो ये पक्का रहेगा कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। और दूसरी बात हम क्या पक्का करेंगे कि मैं वरदानी आत्मा हूँ, बाबा मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहा, झोली मेरी वरदानों से भरपूर कर रहा है, और भट्टी में भी अपनी झोली को भरपूर करके जाएंगे, लेकिन झोली में कोई भी प्रकार का छेद ना हो। छेद कैसे आ जाता है, सुस्ती आ जाएगी, थक जाएंगे, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये योग में ठीक नहीं बैठा है, अच्छा एक दूसरे की बात कर लेंगे, तो कई प्रकार के छेद बनते बनते बड़ा छेद हो जाता है, सारे के सारे वरदान नीचे से छुप जाते हैं, बह जाते हैं। तो इसलिए भट्टी में ना किसको देखना, ना किसके बारे में चिंतन करना, चिंतन कौन सा करेंगे, अपने भाग्य का, अपने गुणों का, बाबा ने जो दिया शक्तियां उन सब का चिंतन मनन करते जाएंगे तो हमारी झोली भरपूर होती जाएगी। और तीसरी बात का इसमें ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसे स्थान पर बाबा ने बुलाया है जहाँ पर बाबा ने एक स्थान पर बैठ करके सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दिया। बाबा ने सारे विश्व की आत्माओं को साकाश दे करके और आप सबको चुना है। बाबा को अहमदाबाद में बहुत नाज रहता था, साकार बाबा को, फिर उसके बाद दादी थी, दादी को तो अहमदाबाद पे इतना नाज रहता था, दादी कहती थी अहमदाबाद तो मधुबन का कमरा है, अहमदाबाद कोई दूर नहीं है, मधुबन का कमरा है। तो आप सभी जो बैठे हैं ऐसे स्थान पर बैठे हैं, मधुबन में बैठे, और जब बाबा को, दादियों को, सब भाई बहनों को इतना नाज रहा है पूरे अहमदाबाद के सभी सेंटर्स पर और सभी भाई बहनों पर, तो हमें भी ये नाज रहे कि हम बाबा के घर में ऐसे स्थान पर आए हैं, बाबा ने खुद प्यार से हमें याद किया। और यहाँ रह करके लाइट हाउस के द्वारा, माइट हाउस के द्वारा लाइट और माइट लेते हुए बाबा कहते खुद भी फरिश्ते बनो और फरिश्ते बन करके सारे विश्व के अंदर साकाश। और चौथी बात हमें क्या ध्यान में रखना है, बाबा कहते भविष्य में जाकर के आप क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बने। तो लक्ष्मी नारायण जो हम बनेंगे उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, बाबा ने हमें किस प्रकार का जिम्मेवारी का ताज दिया, कौन सी जिम्मेवारी का ताज दिया है, मैं संपन्न आत्मा बनूं। मेरी जिम्मेवारी ये है कि मैं संपूर्ण आत्मा बनूं। जब मैं संपूर्ण बनूंगी तो उसको देख करके दूसरे भी बनेंगे। दूसरी बाबा ने कहा है कि मैं आत्मा निर्विघ्न हूं। तीसरी बाबा ने कहा है कि मैं आत्मा सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से संपन्न हो। चौथी बात बाबा लक्ष्मी नारायण के बारे में बताते हैं, वो सर्व शस्त्रों से सजे सजाए हैं। तो हमारे शस्त्र अस्त्र क्या हैं? वो हैं हमारे गुण और शक्तियां। तो बाबा हमेशा कहती थी साकार में, जैसे साकार में बाबा नारायण के चित्र के सामने जाकर के बाबा एक तो खुशी में नाचते थे, दूसरा बाबा क्या करते थे, चित्र के सामने जाकर के चेक करते थे अपने आप को। मैं नारायण तो बनने जा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी किस किस बात की कमी है, किस किस बात का पुरुषार्थ करना है। तो भविष्य में बाबा ने कहा कि आप सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हाथ खड़ा करो जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब मूंज गए हैं, कहीं ने हाथ ही नहीं खड़ा किया है। अब लक्ष्मी नारायण बनना मीन्स लक्ष्मी नारायण की राजधानी में, लक्ष्मी नारायण बनना मीन्स राजाओं मां, जैसे यहाँ पर दादियों के आसपास घूमते हो ना, घूमते ना, दादी को देखा चारों तरफ घेर लेंगे, दादी भी घेर लेती है सबको, प्यारी दादी, दादी बड़ी दादी क्या कर दे, दादी खड़ी है, सारे दादी के आसपास आसपास खड़े हुए, बाबा खड़े होते थे बच्चे हाथ ही नहीं छोड़ते थे बाबा के पास खड़े होकर के, सारे बच्चे ऐसे बाबा को घेर लेते थे। तो बाबा को घेर लेना मीन्स बाबा के पास उसी राजधानी में आना। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण बनना मीन्स लक्ष्मी नारायण की राजधानी में बिल्कुल नजदीक रॉयल फैमिली में प्रिंस एंड प्रिंसेस बनना। तो रॉयल फैमिली वाले तो बहुत नजदीक होंगे, तो आप सभी को तो भाग्य है ऐसा नजदीक बनने का, लेकिन उसके लिए खुद को चेक करना होगा। तो ये भट्टी का एक ऐसा मौका मिला है कि हम खुद को संपन्न करते जाए, कि हम अपने आप को बाप समान बनाते जाए। फिर आप सभी को तो बाबा ऊपर वतन से भी देख रहे हैं, और बाबा वतन से देख करके क्या कर रहे हैं, गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। फिर बाबा अकेले नहीं देख रहे हैं, बाबा के साथ साथ दादियां भी देख रही हैं। दादी को बहुत होता था बाबा के घर में आए, हमें याद आए कि जब शुरू में बाबा के बच्चे आते थे ना, थोड़े होते थे, तो बड़ी दादी क्या करती थी, चारों तरफ फोन करती थी, तुम भी आओ, ये बट्टी रखी है, ये प्रोग्राम रखा है, ये आओ, फलाना आए, सबको फोन करके बुलाती थी। तो कभी कभी हम दादी को कहते थे, दादी घर तो फुल है, कैसे रहेंगे? दादी कहती, भूल गए हो, बाबा का दिल रूपी घर तो विशाल है, बाबा तो कहीं भी बिठाएगा। तो दादी हर एक को बुला बुला करके यहाँ पर इतना प्यार, इतनी खातरी करते, इतनी खातरी के साथ साथ ज्ञान और योग से भरपूर करते। और दादियों ने साकार बाबा के साथ के अनुभव सुना सुना करके वही प्राप्ति कराई है। तो इसलिए हम आपको बताएं कि आप केवल मधुबन में नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर आए हैं वरदानी भूमि में। इस भूमि में 3 दिन रहना, 4 दिन रहना, वो इतना बड़ा भाग्य है कि जितने वरदानों से अपने आप को भरपूर करना चाहे करते, बाबा देने वाला दे रहा है, देने वाला नहीं थकता है, लेने वाले थक जाओगे क्या? नहीं ना, थकोगे तो नहीं ना, भरो जितना चाहिए भरो, हैं? बाबा कहते भर लो, जितना लेना लो, और भर के ही जाना है। और साथ साथ आप सभी अपने घर में आए हैं, और बाबा कहते हैं बिल्कुल आराम से रहना, और कोई भी तकलीफ है, कोई चीज की आवश्यकता है वो भी आप बता सकते हैं, खाने पीने में कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने भाई हैं उनके लिए आप अपनी बहन को बताएंगे, वो भी उनकी मदद करेंगे। और बाबा के जब योग भट्टी करेंगे तो कोई भी शरीर को तो कोई तकलीफ होगी नहीं, फिर भी शरीर तो पुराना है, कभी कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है। तो यहाँ हर प्रकार की फैसिलिटी है, आराम से रहना और आराम से चलना, बिल्कुल फरिश्ते होकर के चलना। अभी हम आपको दो बातें और बताना चाहेंगे कि प्रातः काल से लेकर के 11 बजे तक पांडव भवन के आंगन में ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि फरिश्ते चल रहे। लेकिन भट्टी के दौरान पर फिर क्या बाबा ये भी बताते हैं, ये एक तपस्या भूमि भी है और लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल भी है, जो शिविर में आते हैं और ज्ञान सरोवर में विंग प्रोग्राम्स के लिए आते हैं, वो भी बाबा की इस कर्म भूमि को, चारों धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं। लेकिन वो यात्रु ज्ञानी नहीं होते हैं, वो आते हैं कि एक यात्रा स्थान पे चक्कर लगाना है। दिन को जब आते हैं ना 12 बजे, वो चारों तरफ से घूमते हैं, ऐसा लगता है कि एक तीर्थ स्थान, जैसे मंदिर में जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं या अहमदाबाद के किसी मंदिर में जाएंगे ना, वो दौड़ते जाते आवाज करते जाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, अपनी आंतरिक स्टेज में रहना, उन भक्तों को देख करके बाबा कहते उनको साकाश दो। उनको ये पता नहीं कि ये फरिश्ते यहाँ पर योग कर रहे हैं, बट्टी कर रहे हैं, ये इतने अच्छे अनुभव कर रहे हैं। 4 बजे के बाद तो बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, लेकिन उनका भी भाग्य है और आपका भी भाग्य। उनका भाग्य ये है कि मधुबन कर्म भूमि में कदम रखना भी बहुत बड़ा भाग्य, और आपका भाग्य क्या है, मधुबन वरदानी भूमि में भट्टी करना ही अपने आप को संपन्न करना और भरपूर करना है। तो जब दोपहर के टाइम पर रोज नहीं होता है, जब शिविर शुरू होता है ना, तो 2 दिन पहले और लास्ट के 2 दिन और 1-2 दिन इधर ज्ञान सरोवर से आते हैं, तो वो दोपहर के टाइम आते हैं। तो इसलिए दोपहर के टाइम जब वो भोजन करते हैं, थोड़ी आवाज करते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, आवाज में रहते हुए आवाज से परे जाना। ये भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी भट्टी में, हैं? देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, और देखते हुए भी उनको साकाश देना। तो आपको हर प्रकार का अभ्यास करने का मौका मिलेगा, अमृत वेले से बाबा के साथ, बाबा के स्नेह में खो जाए, और उसके बाद बाबा के कर्म भूमि पर खड़े होकर के ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे साथ, बाबा हाथ पकड़ के चला रहा है, बाबा मेरे को घुमा रहा है। जब आते ना मधुबन के सारे स्थान पर, बाबा क्या करता था, इसमें से कौन है जिन्होंने पहले भट्टी की थी पिछले साल, अच्छा जिन्होंने अभी आए हैं वो हाथ खड़ा करे, थोड़े हैं पिछले वाले यार हम। तो पिछले साल तो आपने अनुभव किया बाबा के हर स्थान पर, बाबा ने एक एक स्थान पर जाकर के कैसे तपस्या की और बच्चों की पालना की। तो यहाँ भी हम जब ये खड़े होंगे तो बाबा मुझे क्या दे रहा है, बाबा की झोपड़ी में जाएंगे, बाबा स्नेह के झूले में झूला रहा है, आंगन में खड़े तो बाबा कहते आओ बच्चे भरपूर कर रहा है, बाबा मेरा हाथ पकड़ करके चला रहा है, क्लास में जाएंगे तो बाबा टीचर बन करके हमें क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा स्टूडेंट बना रहा है, हैं? और साथ साथ पढ़ाई से हमको भरपूर कर रहा है। फिर शाम के टाइम जब योग करेंगे और चारों धाम की यात्रा करेंगे, शांति स्तंभ पर जाएंगे, तो वह क्या अनुभव करेंगे, क्या अनुभव करेंगे, शक्ति का। बाबा एकदम लाइट हाउस बन करके, माइट हाउस बन करके हमें शक्ति भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, और वो लाइट हमें क्या करनी है, अपने अंदर भरो। ऐसे आपको लगेगा हम बिल्कुल लाइट हाउस के सामने खड़े हैं। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो बाबा कैसे बच्चों को प्यार से पालता था। हिस्ट्री हॉल में जब बाबा मुरली सुनाते थे ना, मुरली सुनाते सुनाते बाबा देखते थे कोई सुस्ती तो नहीं कर रहा है, किसने उबासी तो नहीं दी, किसी ने आंख बंद तो नहीं की। फिर बाबा बीच में देख करके उसको दृष्टि देते थे। फिर बाबा क्या करते थे, मुरली सुनाते सुनाते बीच में साइलेंस का अनुभव कराते थे। फिर हिस्ट्री हॉल के अंदर एक चक्कर लगा के बच्चों को दृष्टि देते थे, और दृष्टि जैसे बाबा ने दी बच्चे उड़ गए, कहाँ चले गए, वतन में चले गए। तो हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो बाबा के साथ वतन में चले जाना, वहां भी अनुभव करना। तो अभी आप सभी का बहुत बहुत बाबा के घर में स्वागत है, और आज आप लंबी ट्रेवलिंग करके आए हैं, बस में बैठ के आए हैं, थोड़ा थके हुए भी हैं, लेकिन बाबा के घर आते ही हर प्रकार की थकावट दूर हो जाती है। बाबा इतना फ्रेश कर देता है कि कुछ भी नहीं, थकावट लगती नहीं है। थकावट सब फ्रेश है ना, हैं? सब ठीक है, तबीयत ठीक है, अच्छा दूसरे हैं? बाबा कहते थे हाँ जी कहो, हैं? बाबा ने ये पक्का कराया, हाँ जी, रॉयल बाप के बच्चे है ना, हाँ भी ठीक है, लेकिन हाँ जी बाबा कराते थे। और दूसरा कि जब आप जाएंगे ना, ऊपर आपका भोजन रखा है, लेकिन क्या है कि कई हमारी बुजुर्ग माता हैं, बाबा कहते ये पुराना शरीर है, इसको संभालना है, दौड़ना नहीं, आराम से चलना, और जो नहीं चढ़ सकती है वहां पर लिफ्ट है, गाइड इनको बता देना, और यहाँ पर भी आप आराम से चलना, बिल्कुल रॉयल्टी, कोई काम के लिए जल्दी नहीं है, यहाँ तो आप तपस्या करने आए, दौड़ने का काम नहीं करो, वहां दौड़ते हैं, घर में दौड़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात के लिए, बाकी योग में आराम से आओ, क्लास में टाइम पर आओ, और नहीं चल सकते धीरे से चलो, और वहां पर लिफ्ट भी है, और आराम से चलने का, दौड़ने का नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है, चप्पल ऐसी होती है तो थोड़ा स्थान कहीं, अभी तो ठीक है, जब बरसात होती है थोड़ा फर्श स्लिपरी होता है, लेकिन जब किचन में जाते हैं, डाइनिंग में जाते हैं, वहां पर कदम संभल संभल के रखना। बाबा ने दो बातें कही हैं, ज्ञान मंजिल में कदम संभल संभल के रखते हैं, फिर गीत है कदम कदम पे बाबा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे अनुभव आते हैं, लेकिन किचन में कदम संभल संभल के रखना, वो कभी पानी गिरा हुआ है, कभी माई सफाई कर रही है, तो वहां पर वो ध्यान रखना, आराम से जाना। तो ये सब बातों का भी बाबा हमेशा सिखाते हैं कि हर छोटी बात पे जितना ध्यान देते जाते हैं उतना हम संपन्न बनते जाते हैं। तो हमारी भी यही शुभकामना है, दादियों की भी, और खास मोहिनी बहन, मुन्नी बहन ने, लता मोहिनी दादी ने आप सबके लिए जो बट्टी का आयोजन किया है, उन सब की तरफ से बाप दादा वतन के अव्यक्त फरिश्ते, दादियों की तरफ दादी जानकी, गुलजार दादी, लता मोहिनी दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और सब मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आपका प्यारे प्यारे मधुबन घर में बहुत बहुत स्वागत है, और आपको मुबारक है, पहला पहला टर्न आपने लिया, और ये बापू नगर के तो बाबा के बच्चे लाडले है ही हैं, और ज्यादा अनुभव करेंगे, और अनुभव के साथ साथ इस भट्टी में अच्छी तरह से भरपूर होके जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और आप सब और भी औरों को अनुभव कराते रहें। अच्छा, ओम शांति। और स्वागत में बाबा आप सबका मुख मीठा भी कराएंगे, टोली भी मिलेगी। ओम शांति। अभी दो मिनट बाबा की याद में बैठूं।